साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम शांति शांति शांति। कण कण में व्याप्त सबके हृदय में, सभी जगह अंदर और बाहर जो परम चेतना व्याप्त है उसे स्मरण करता हूँ। परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी जिन्होंने योग को एक विज्ञान का स्वरूप दिया और ऐसे महामानव कि जो योग को जन सामान्य तक ले आए और योग का जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है योग की उसे शायद हमारे सामने रखने वाले पहले महामानव थे। मेरे गुरुजी स्वामी परम पूज्य सत्यानंद जी को गुरुजनों के चरणों में परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी और जिनकी पावन स्मृति में यह आयोजन है, जिन्होंने इस संस्था को छोटे से वृक्ष के रूप से बड़े वटवृक्ष की तरह ले आए, परम पूज्य स्वामी अध्यात्मानंद जी को सबके पावन चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा को आपके सामने यहाँ ले आए और मज्जन करा रहे हैं ऐसे स्वामी मुक्तानंद जी को और संत ग्रंथ आप सब। विषय है अध्यात्म और विज्ञान, उसे और स्पष्ट समझें तो उसे ऐसा कहना चाहिए कि जड़ का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं वो है जड़ का, मटेरियल्स का, पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, जगत का। और अध्यात्म का मतलब है चेतना का विज्ञान। एक है प्रकृति का विज्ञान, दूसरा है पुरुष का विज्ञान, एक है माया का विज्ञान और दूसरा है ब्रह्म का विज्ञान। और ये दोनों ही होने चाहिए। एक विज्ञान हमें अभ्युदय देता है, दूसरा विज्ञान हमें निःश्रेयस देता है। एक विज्ञान बाहर भौतिक विकास करता है, दूसरा विज्ञान हमारी अंतरात्मा का विकास करता है, हमारा विकास करता है। भारत ने उसे ही धर्म कहा है जहां से दोनों का विकास हो। अभी हमारा जो जीवन है वो भौतिक या मटेरियल्स के विज्ञान से इतना प्रभावित है और हमारा जीवन विज्ञान से इतना जुड़ा है कि शायद हम उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले 150-200 साल में, और कहना चाहिए 50 वर्ष में, जो विज्ञान बढ़ा है और उसने हमारे जीवन के हर आयामों को जिस तरह छुआ है और उसका विकास हुआ है, वो अद्भुत है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चार ओर देखें तो 25 वर्ष पहले भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मैं एक आईटी कंपनी में गया था तो उनके अधिकारी मुझे सबसे परिचय करा रहे थे, तो एक बहन जी से परिचय कराया उन्होंने, बोले ये आईटी डिपार्टमेंट की हेड है, एआई डिपार्टमेंट की हेड है। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि बहन जी तो असली है ना, ये तो आर्टिफिशियल नहीं है। तो वो हंसने लगे कि हाँ स्वामी जी, अभी ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने सजीव हैं कि कहना कठिन है कि ये सही है या गलत है। और धीरे धीरे ये हमारी मानसिकता बदल रही है। घर में काम करने के लिए तो ह्यूमनॉइड रोबोट आ ही गए हैं। जापान में कई होटल्स हैं, पूरी रोबोट्स चलाते हैं, इंसान नहीं हुआ। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी भविष्य में रोबोट्स ही हो जाए। चाइना जो डॉल्स बना रहे हैं वो इतनी सजीव लगती हैं कि लोग इंसान को भूल जाएंगे। हर चीज में स्थान रॉबर्ट्स, साइंस उसकी टेक्नोलॉजी ले रही है। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे चारों ओर जो भी विकास हो रहा है उसमें जीवन नहीं है, वो सारी चीजें जड़ है। ट्रेन है, प्लेन है, कंप्यूटर है, जो भी टेक्नोलॉजी हम चारों ओर हो रही है वो जड़ है, चेतना नहीं है, जीवन नहीं है उसमें। तो वो तो इतनी फल फूल रही हैं कि शायद वही सब कुछ हो जाएंगी, लेकिन इस पृथ्वी में जीवन खत्म हो रहा है। छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर इंसेक्ट्स से लेकर पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी सब खत्म हो रहे, सब जंगल खत्म हो रहे, जीवन खत्म हो रहा है और मिट्टी पत्थर पंचभूत बढ़ रहे हैं। सब जगह देखेंगे, जीवन रिस्क में और यहां तक कि इंसान रिस्क में, मनुष्य जाति स्वयं रिस्क में। आपने कभी ध्यान दिया है कि जहां जहां जड़ वस्तुएं बढ़ रही हैं, हमारे जीवन में एकदम कहीं कहीं विपरीत प्रभाव हो रहा है। जितने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कभी ध्यान दिया? जितनी यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं उतना ही हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है अपने प्रति, उल्टा हो रहा है। हर जगह देखिए, एक वैज्ञानिक है जोनास साल्क, अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, वायरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक बात कही थी 85 के आसपास कि अगर इस पृथ्वी से इंसेक्ट्स खत्म हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, तो 50 साल के अंदर अंदर कोई लाइफ बचेगी नहीं। समझिएगा, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके बिना हमारा शरीर संभव ही नहीं, जीवन संभव ही नहीं, खेती वृक्ष हो संभव ही नहीं इंसेक्ट्स ना हो। तो इंसेक्ट्स अगर खत्म हो जाएं तो 50 साल के अंदर अंदर पृथ्वी वीरान हो जाएगी, जीवन नहीं होगा वहां। लेकिन अगर ह्यूमंस नहीं हो, अगर इंसान नहीं हो, तो पृथ्वी का हर जीवन 50 साल के अंदर अंदर फ्लरिश हो जाएगा। समझिएगा, ऐसा नहीं लगता है कि ये चिंता का विषय है। ह्यूमन नहीं हो तो पृथ्वी खत्म नहीं होगी, फ्लरिश हो जाएगी। और कोरोना के समय 3 महीने के लॉकडाउन में हमने अनुभव किया उसको, सब पक्षी आजाद, पशु आजाद, हाईवे में घूम रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अमृतसर से हिमालय की चोटियां बर्फ की दिख रही हैं, तारे इतने साफ दिखने लगे, नदियों का पानी साफ हो गया। और जैसे इंसान घर से बाहर निकला तो ना हवा लेने लायक रहेगी, ना पानी पीने लायक है, ना खाना खाने लायक। हम रोज 100 से 150 तरह के केमिकल्स शरीर में डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, आर्टिफिशियल कलर्स के रूप में, एसेंस के रूप में। और कैंसर थोड़े दिनों में इतना बढ़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। साइंटिस्ट कहते हैं कि 4 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मनुष्य ही तो। स्टीफन हॉकिंस ने मृत्यु से पहले कहा था कि अगर मानव जाति को जिंदा रहना है तो उसे 100 वर्ष के अंदर अंदर कोई दूसरा प्लेनेट खोज लेना चाहिए, ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। और उसे हम अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता, ऐसा तो इंसान भी नहीं चाहता कि हम खत्म हो जाएं, कोई नहीं चाहता। विज्ञान भी नहीं चाहता है कि हम इंसान को मार दें। विज्ञान तो हमें तरह तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर है। आपको घर में पहले लाइट चालू करने के लिए स्विच चालू करना पड़ता था, और सुविधा दी आप रिमोट से बैठे बैठे चालू करिए। अब रिमोट में भी हाथ नहीं लगाइए, केवल ऑर्डर दीजिए आप, हे गूगल लाइट ऑन। और आप प्रयत्न कर रहे हैं कि आप केवल विचार करेंगे और लाइट ऑन हो जाएगी, आपके चिप ब्रेन में लगा देंगे, आप केवल विचार करेंगे लाइट ऑन। विज्ञान तो हमें सुविधा दे रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि विज्ञान का ये शुभ चिंतन हमारे लिए अशुभ हो रहा है? तरह तरह की दवाएं, सर्जरी में, हर जगह देखिए आप, असंभव चीजें संभव हो रही हैं। इतनी हमें सुविधाएं दे रहा है विज्ञान, लेकिन हमारी बलि लेकर। तो ऐसा तो विज्ञान भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते हैं कि सब खत्म हो जाए पृथ्वी से। क्यों हो रहा है ऐसा, उसे थोड़ा समझेंगे। और हमारे विज्ञान को सचमुच अध्यात्म नहीं कहना चाहिए, केवल अध्यात्म विज्ञान कहना चाहिए। अध्यात्म स्वयं में एक विज्ञान है। तो अध्यात्म विज्ञान और भारतीय विज्ञान को भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और पश्चिम ने विज्ञान का जो रूप दिया है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा विज्ञान हजारों साल पुराना है, हजारों हजारों साल से वो परंपरा चल रही है, अविच्छिन्न रूप से, वो खत्म नहीं हुई है। और उसे हजारों लाखों लोगों ने अनुभव किया है, जीवन में उतारा है उस विज्ञान को। ये विज्ञान तो 16वीं सदी के प्रारंभ से शुरू हुआ है। ब्रूनो का बलिदान लेख पता होगा, ब्रूनो ने केवल इतना ही कहा था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। तो उसकी जीभ निकाल ली गई थी उस समय की धर्म संस्थाओं से, और उसे पब्लिक में जिंदा जला दिया था। ऐसी बात करना भी कठिन था, ऐसी परिस्थिति से विज्ञान आगे आया है। गैलीलियो के साथ जो हुआ आप सबको मालूम होगा, कोर्ट में ले गए, अंत में उसने सारी रिसर्च अपनी वापस ले ली, जेल में डाल दिया। तो ऐसे संघर्ष करके विज्ञान आगे आया है। और न्यूटन, गैलीलियो, देकार्ते वगैरह के बाद विज्ञान ने थोड़ा एक व्यवस्थित रूप लिया, जिसे हम न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं। वो विज्ञान ये मानता है कि सारा ब्रह्मांड है एक मशीन की तरह, मशीन है वो, जो एक निश्चित नियम से काम कर रही है। स्पेस है वो स्थिर है, टाइम है अपनी एक निश्चित गति से बढ़ रहा है। तो अगर इस ब्रह्मांड के जो बिल्डिंग बेसिक ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो मूलभूत तत्व हैं, उसको अगर हम समझ लें तो पूरे ब्रह्मांड को हम समझ लेंगे, और हम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकेंगे। इस न्यूटन की खोज के बाद ये जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, विज्ञान की सुविधाएं बढ़ी, इन्हीं सब नियमों पर आधारित थी। न्यूटन के समय तक परमाणु विभाज्य नहीं था, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता था। सिखाया ही जाता था कि परमाणु सबसे छोटा कण, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे जब परमाणु टूटे और उनके अंदर हम उतरे, तो विज्ञान ऐसे रूप में जाने लगा कि जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया, वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कुछ इतने छोटे और इतने कम आयु के हैं, आप कल्पना नहीं करेंगे। कुछ पार्टिकल्स की उम्र कितनी है, 10^8 to 12 -8 to -10 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का करोड़वां भाग लगभग, यानी कि वो कण 1 सेकंड में करोड़ बार जन्म लेते हैं और करोड़ बार मरते हैं। तो हमारा जो विश्व है इन्हीं से मिलकर बना, हमारा शरीर ऐसे ही बना है। जैसे कोई लाइट है ऑन ऑफ हो रही हो 1 सेकंड में करोड़ बार। तो कभी ध्यान दिया है कि एक निश्चित क्रम में लाइट ऑन ऑफ होती है तो अलग अलग आकृतियां बनती हैं, कहीं लगता है चक्र घूम रहा है, कहीं लगता है वेव चल रही है, कैसे ऑन ऑफ होती है? आप टीवी देखते हैं उसमें पिक्चर चलता नहीं है, उसके जो पिगमेंट्स हैं उसमें लाइट ऑन ऑफ इस तरह होती है कि वो पिक्चर पूरा हमें चलता हुआ दिखता है। सारा विश्व ऐसे ही है, हमारा शरीर ऐसी है, सब कुछ ऐसे है, केवल एक तरंग जैसा ऑन ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि जब ये ऑफ हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और इनको लाता कौन है वहां से? एक पार्टिकल खत्म हो रहा है, उसकी जगह दूसरा पार्टिकल आ रहा है, सेम कैरेक्टर के साथ आ रहा है, तो इनकी हिस्ट्री, इनके कैरेक्टर को मेंटेन कौन करके रखता है कि वही कैरेक्टर वाला पार्टिकल आना चाहिए? कौन मेंटेन करता है? कोई उत्तर नहीं। और फिर 21वीं सदी या 20वीं सदी कहना चाहिए, 20वीं सदी जैसे थोड़ी आगे बढ़ी और प्रकाश की किरणों में काम हुआ, क्वांटा में काम हुआ, तो उसने तो पूरा हिला के रख दिया। क्वांटा छोटे छोटे फोटॉन से सूर्य की किरणें बनी, वो सबसे छोटा पार्टिकल है। उसे थॉमस यंग ने बहुत पहले कहा था कि फोटॉन्स केवल वेव्स हैं। बाद में आइंस्टाइन ने लगभग 100 वर्ष के बाद सिद्ध किया कि ये वेव्स नहीं है, पार्टिकल्स हैं। और अध्ययन किया गया तो दोनों वो दिखाता है, कभी वेव की तरह तो कभी पार्टिकल की तरह। तो वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक वैज्ञानिक ने कहा कि सचमुच ये न तो वेव है न पार्टिकल है, हम कैसे उसे अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वर उसको किस तरह लेता है, उस तरह वो अपना कैरेक्टर दिखाता है। अभी तक ऑब्जर्वर कहीं नहीं था, न्यूटनियन फिजिक्स में ऑब्जर्वर दृष्टा नहीं था, साक्षी नहीं था, चैतन्य नहीं था, केवल जड़ ही था। इसने चौंका दिया कि ये दृष्टा कौन है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इंटरफेयर, उसके इंटरफेरेंस के बिना, विदाउट चेंजिंग द पार्टिकल्स यू कांट स्टडी इट। आप जैसे ही उसको अध्ययन करते हैं वो अपना कैरेक्टर चेंज हो जाता है आपके अध्ययन के हिसाब से। तो सूक्ष्म जगत में दूसरी बातें निकल कर सामने आई कि स्थूल जगत में जो हम जानते हैं वो मानते हैं, हम जानते हैं कि आग जला देती है तो हम वैसा मानते हैं कि आग जलाएगी। लेकिन जैसे ही हम सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो उल्टा होता है, आप जैसा मानते हैं वैसा जानते हैं। गहरी हिप्नोसिस में आप उसको सेंसेशन देते हैं कि आग ठंडी है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, उसके ऊपर से चलो, वो मान लेता है, वैसे ही उसको अनुभव होता है। कैसे प्रयोग किए गए? एक एक हफ्ते तक भूखा रखा गया उनको हिप्नोसिस में, और उनको केवल सजेशन देते थे, चलो उठ जाओ, नाश्ता कर लो, स्नान वगैरह कर लो, नाश्ता भी कर लेते वो, खाना भी खिलाते, सुला भी देते सब, और रियल में उनको कुछ नहीं दे रहे थे। एक हफ्ते में न तो उनका वजन कम हुआ, न शक्ति कम हुई, कुछ नहीं कम हुआ। और जैसे हिप्नोसिस छूटी और कहा कि आपको खाना नहीं दिया गया, तो सब चिल्लाने लगे खाना लाओ खाना लाओ। सूक्ष्म जगत में आप जैसा मानते हैं वैसा होता है, वहां दृष्टा महत्व का हो जाता है, दृष्टा की भावनाएं महत्व की हो जाती है। और वो सूक्ष्म जगत केवल सूक्ष्म जगत तक ही नहीं होता, वो धीरे धीरे स्थूल जगत को भी प्रभावित करने लगता है। पानी में बहुत अनुसंधान हुआ है, आप पानी को रखिए, उसे प्रेम से पूज्य भाव से देखिए, ध्यान करिए, शांत रहिए, बैठे रहिए, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे क्लस्टर्स बनाते हैं। और अगर प्रेम है, भाव है, दया है, करुणा है, आदर है, रिस्पेक्ट है, तो वो पार्टिकल ऐसा शेप बनाते हैं एकदम डायमंड की तरह। और अगर नफरत से देख रहे हैं, हिंसा है, द्वेष है, तो वो जैसे कोई डेविल हो ना, वैसा सेम बनाते हैं। और वो हमारे पानी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। अच्छे सेप हैं वो पानी अमृत की तरह हो जाता है, मेडिसिन की तरह हो सकता है। इस विज्ञान को हमारे ऋषि हजारों वर्ष पहले जानते थे, अलग अलग मंत्रों से पानी को संस्कारित करना, अभिमंत्रित करना, उसको दर्द पेशेंट को देना, अलग अलग जगह उसका उपयोग करना। तो हमने केवल भावना की, हमने केवल सोचा, और धीरे धीरे वो कैरेक्टर वैसा उसमें होने लगा। वो केवल वहां नहीं होता है, हर चीज में होता है। हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, अगर आप शांत रहते हैं तो हमारा पर्दा, खिड़कियां, टेबल, सब सूक्ष्म में, गहरे सूक्ष्म में उनके मॉलिकुलर मूवमेंट्स बदलते हैं, उनकी गतियां बदलती हैं, उनका प्रभाव बदलता है। इसलिए कहीं कोई संत रह गया हो, कहीं कोई आत्मस्थ पुरुष रह गया हो, कहीं कोई सिद्ध पुरुष रह गया हो, जिस वृक्ष के नीचे बैठ गया हो वो वृक्ष कल्प वृक्ष होने लगता है। तो सूक्ष्म जगत में जब प्रवेश किया तो उल्टी बातें होने लगी, और भी आगे बढ़े तो समझ में आया कि न तो ये वेव्स है और न पार्टिकल्स है। और जो जगत न्यूटनियन फिजिक्स में माना जाता था कि हर फ्रेगमेंट से है, उस हर चीज अलग अलग है, टुकड़े टुकड़े में है, धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि ये सब कुछ एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल किसी न किसी अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, उसे वैज्ञानिकों ने अनुभव किया। हाइजेनबर्ग का लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी कि आप उसको किसी भी पार्टिकल को अध्ययन ही नहीं कर सकते ठीक से, क्योंकि किसी पार्टिकल को अध्ययन करना है तो आपको उससे अलग लाना होगा, दूसरों से अलग लाना होगा, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई आप दूसरों से अलग ही नहीं कर सकते। या उसके अध्ययन के लिए किसी दूसरे पार्टिकल से आपको उसको टकराना होगा, कोलाइड करना होगा, और जब आप टकराते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। तो धीरे धीरे वैज्ञानिक हैं, खास तो नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा कि सचमुच जो अस्तित्व है, वास्तविकता है, उसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते, नहीं समझा जा सकेगा। कोई एक यूनिफॉर्म सत्ता है जो सबको जोड़ रही है, और जब एक एक फोटॉन को लेकर अध्ययन किया गया, अलग निकाल के अध्ययन किया गया, फोटॉन गन से अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि एक फोटॉन को आप एक ट्विन्स फोटॉन में एक फोटॉन को इधर भेज देते हैं, वो लाखों माइल, कोई डिस्टेंस का मतलब नहीं है, लाखों करोड़ जितना माइल भेजिए, दूसरा इधर भेजिए, तो एक का अगर मूवमेंट आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं बदलते हैं, तो दूसरा अपने आप बदल जाता है। कैसे मैसेजिंग हुई? क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि प्रकाश की गति से तेज कोई गति नहीं, तो कैसे? यहां विज्ञान अनुत्तरित है और इस सत्य को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था, जिसे अभी कहा उन्होंने कि हम बुद्धि से अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, इंस्ट्रूमेंट से हम उसको नहीं जान सकते, उसे हजारों वर्ष पहले जान लिया था। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो, वहां आंखें नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाती, उसे नहीं जाना जा सकता है। तो करना क्या है? फिर उपाय क्या है? उपाय है सबसे बड़ी प्रयोगशाला, सबसे विकसित प्रयोगशाला, जिससे विकसित इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं, वो है हमारा शरीर। ये प्रयोगशाला है, तो हमारे ऋषि ने इसे प्रयोगशाला बनाया। कस्य धीरः प्रत्यगात्मानमिच्छति आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। वो धीर पुरुष, उन्होंने क्या किया कि इंद्रियों को समाहित किया, शांत किया, मन को शांत किया और गहरे में उतरे। इसलिए हम कहते हैं कि जहां विज्ञान की सीमा पूरी होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। उस अननोन को जो पार्टिकल्स को गति दे रहा है, जो देख रहा है, जो उसे प्रभावित कर रहा है, उसकी ओर बढ़ना, वो वहां से अध्यात्म शुरू हुआ। और हम अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर को इंद्रियां चला रही हैं, तो शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हुई, इंद्रियों को मन चला रहा है। एक वैज्ञानिक है ब्रूस लिप्टन, उन्होंने सेलुलर बायोलॉजी में अद्भुत काम किया। हमारा एक विचार पूरे शरीर को बदलता है, शरीर के एक एक कण को बदलता है। हमें गुस्सा आया, शरीर का कौन सा कण है जहां गुस्सा नहीं होता है पूरा? और ये एक लंबी यात्रा है। न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हजारों वो कन्वे करते हैं, मैसेज देते हैं कि भाई गुस्सा करना है, तो शरीर उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया करता है। हर जगह गुस्सा फैलता है, तो उसे चलाने वाला तो मन है। मन के पीछे कौन है? बुद्धि है उसकी नियामक, उसके पीछे कौन है? किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं जाया जा सकता। इंस्ट्रूमेंट से तो हमारे अभी इतने हैं, अभी हम मन को नहीं समझ पा रहे, मन को नहीं देख पा रहे। हाँ, मन कि बदलने से शरीर में जो बदल रहा है उसको हम देख रहे हैं। तरह तरह के हजारों यंत्र हैं, आपकी पल्स को अध्ययन करते हैं, आपकी सांसों को अध्ययन करते हैं, आपके टेम्परेचर को अनुभव करते हैं, कार्डियोग्राम को अनुभव करते हैं, इंसिफेलोग्राम को अनुभव करते हैं कि मन के बदलने से ये सब बदल रहा है। लेकिन मन कहाँ है? वो तो हमारी पकड़ में है नहीं। तो वो मन के भी आगे गहराई में गए और धीरे धीरे उन्होंने उस सत्य को जाना। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परम किंचित् सा काष्ठा सा परा गति। इंद्रियों से श्रेष्ठ वो अर्थ हैं जिनको वो ले जाती हैं, सूक्ष्म वो संवेदनाएं हैं, उससे श्रेष्ठ मन है और उससे श्रेष्ठ बुद्धि है, उससे श्रेष्ठ महत्तत्व है, हिरण्यगर्भ है, और उससे श्रेष्ठ प्रकृति है, मूल प्रकृति, और उससे भी श्रेष्ठ उन्हें अनुभव करने वाला दृष्टा है, पुरुष है, वो अंतिम है, उससे आगे कुछ भी नहीं। और वो बढ़े किसी प्रतिक्रिया के बिना, साक्षी भाव से केवल देखते देखते, मन के पीछे कौन है, बुद्धि के पीछे कौन है, प्रकृति के पीछे कौन है, और वहां तक पहुंचे। और वहां उन्होंने घोषणा की कि इस सत्य को जाने बिना हमारे प्रश्नों का निराकरण नहीं है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। कभी ध्यान दिया है? हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं, उत्तर भी मिलते हैं। पैसे नहीं है, पैसे आ जाते हैं, घर नहीं, घर आ जाता है, तरह तरह के प्रश्न होते हैं, बीमारी हुई, बीमारी चली जाती है, लेकिन प्रश्नों का अंत होता है क्या? ऋषि कहते हैं कि वहां तक पहुंच गए तो प्रश्नों का अंत हो जाता, फिर कोई प्रश्न नहीं होता। और उस स्थिति में पाकर ही वो ऐसे आनंद, ऐसी समाधान को पाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां आनंद का सागर हमारे अंदर होता है, प्रकृति की सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, पक्षियों का गीत, सब अंदर होता है, और उसके बिना कभी समाधान नहीं। आप कितना भी पाल, सारी पृथ्वी की धन दौलत ईश्वर सब मिल जाए, समाधान नहीं। उसे ऋषियों ने जाना। तो प्रश्न ये है कि जड़ जीवन के लिए है या जीवन जड़ के लिए? हमें अगर दो में से एक निश्चित करना हो कि वह ये जड़ है, ये जीवन है, हम किसे सेलेक्ट करेंगे, जीवन को या जड़ को? जीवन महत्व का, अध्यात्म महत्व का है, और अध्यात्म स्वयं में एक विज्ञान है, अध्यात्म खुद विज्ञान है। लेकिन विज्ञान की कठिनाई क्या है? हजारों लोगों ने उस आत्मा को अनुभव किया, वो वही हुए, हजारों लोगों ने पूर्व जन्म का अनुभव किया, अध्ययन हुआ, हजारों वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन वो बात वैज्ञानिक नहीं हुई है। क्यों? कि वो विज्ञान के किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आई है, वो यूनिवर्सल नहीं हुई है। विज्ञान केवल प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण मानता है कि जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख सकें, जिसे हम अनुभव कर सकें, उसे केवल मानता है। लेकिन हमने आगम प्रमाण को माना है, हमने उपनिषदों के ऋषियों के ज्ञान को प्रमाण माना है, ज्ञानियों के शब्दों में हमने विश्वास किया है। उसे समझिएगा। मान लीजिए आपने स्वप्न देखा कि आप सफेद हाथी में बैठकर जा रहे हैं, और आपके साथ मित्र हैं, रमेश जी, मोहन जी भी बैठे हुए हैं, और आप सफेद हाथी में बैठकर जा रहे हैं। दूसरे दिन आप अपने मित्र से कहते हैं कि मैंने अपना स्वप्न देखा है, मैं सफेद हाथी में बैठकर जा रहा था, मेरे साथ मोहन जी भी थे और भी एक मित्र थे। तो बोले, तुमने ऐसा स्वप्न देखा है, उसका क्या प्रमाण है? प्रमाण बताओ। आप क्या प्रमाण बताएंगे? मोहन जी को विटनेस की तरह लाएंगे, भाई बताओ ना, तुम भी तो बैठे थे साथ में। तो क्या मान लिया जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं? आपने वो स्वप्न देखा है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ कैसे कह सकते हैं आप उस स्वप्न को, भले स्वप्न है लेकिन देखा तो है हमने। इसलिए हमने ऋषियों के अनुभव को प्रमाण माना, और वो अनुभव किसी यंत्र में कभी भी नहीं आ सकेगा, समझना है। नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग का यही कंक्लूजन, वो बुद्धि में कभी भी आने वाला नहीं है, वो अनुभव में ही आएगा। उन्होंने अनुभव किया है अंतरात्मा को, उन्होंने अनुभव किया कि परम स्वस्थता क्या होती है, परम उपलब्धि क्या होती है, परम समाधान क्या होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, सब कुछ पूर्ण समाधान होता है। उन्होंने कहा तो पश्चिम के विज्ञान के पास चेतना नहीं है, इसलिए उसने जितना काम किया वो केवल मटेरियल में किया है, चेतना को भूल के किया है। इसलिए वो विज्ञान कितना भी आगे जाए वो चेतना को धीरे धीरे खत्म करेगा, जीवन को खत्म करेगा। हमने भी वैभव देखा है, और पश्चिम वो वैभव अभी सोच भी नहीं सकता, हमने वो वैभव देखा है। हमने भी विज्ञान देखा है हजारों वर्ष पहले। आप अजंता की गुफाओं में जाइए, पेंटिंग्स हैं 2000 साल पहले की पेंटिंग्स हैं, जैसे जैसे साफ करते हैं वैसे वैसे और चमकते, नेचुरल पेंटिंग्स। अभी भी ऐसा कोई पेंट विकसित नहीं हुआ है कि हजारों वर्ष तक रहे। कुतुब मीनार के पास अशोक स्तंभ है, खुले आसमान के नीचे है, दिल्ली का पॉल्यूशन, बरसात, आंधी पानी सब झेल रहा है वर्षों से, कुछ नहीं हुआ उसको, रस नहीं है। अभी भी हम ऐसा लोह नहीं विकसा सके कि उसमें रस ना लगे। केवल आप इतना करें कि किसी भी फैकल्टी को मैं कहता हूँ लिखिए आप, और उसके आगे लिखिए इन एंशियंट इंडिया, और सर्च में जाइए मैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया, जाइए सर्च में केमिस्ट्री इन एंशियंट इंडिया। हम एक धातु से दूसरी धातु बना सकते थे, हम तांबे से सोना बना सकते थे, चांदी से सोना बना सकते थे, और केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं। जैसे जैसे ऋषि समाधि की ओर गए तो मन की अद्भुत शक्तियों को विकसित किया उन्होंने। शरीर से बाहर निकल सकते हैं, बिना खाए पिए रह सकते हैं, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च पर शरीरावेशः। और एक विज्ञान दिया कि कैसे शरीर को छोड़ के हम निकल सकते हैं बाहर, जिन शक्तियों की अभी विज्ञान कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। मैं जोधपुर के में था एक बार, तो वहां एक सती माँ थी, 40 साल तक बिना खाए पिए रही, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। अभी अंबाजी में थे एक साल, हमने उस विज्ञान को भी देखा, बाहर के वैभव को भी देखा, आत्मविज्ञान को भी देखा। तो अध्यात्म को केंद्र में रख के वे विद्ये वेदितव्ये, ऋषि कहते हैं दो विद्याएं जानने चाहिए, परा चैवा परा, परा और अपरा विद्या। अपरा विद्या है सारी जो चेतना के अलावा है, दृष्टा के अलावा है, वो सारी विद्या है। और चेतना का विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, वो पराविद्या है। परा के लिए अपरा है, अपरा के लिए परा नहीं है। सारे यूनिवर्स जीवन के लिए है, जीवन के लिए, यूनिवर्स के लिए, मटेरियल के लिए जीवन नहीं है। इसलिए हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने दोनों को साथ साथ विकसित किया। हमने वैभव भी देखा, हमने राजा महाराजाओं का वैभव देखा, किले, बड़े बड़े किलेओं का वैभव देखा, और फकीर का त्याग भी देखा जिसके शरीर में वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं है, उसके आनंद को भी देखा, उसकी मस्ती को भी देखा है हमने, हजारों वर्ष से देखते आ रहे। इसलिए आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति में अध्यात्म ज्यादा महत्व का है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा अध्यात्म और ज्यादा महत्व का होता जाएगा, उसकी जरूरत और ज्यादा होगी। इसलिए हमारे जीवन में अध्यात्म भी होना चाहिए, और वो अध्यात्म आएगा सब कुछ छोड़ने के बाद, सबसे मुक्त होने के बाद। रामकृष्ण एक कहानी सुनाते कि जब सांप और नेवले लड़ते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि नेवला बीच बीच में कोई वनस्पति सूंघ के आ जाता है तो सांप का जहर नहीं लगता है। तो ऐसे गृहस्थ को भी संसार से निकल के थोड़ी थोड़ी तो वनस्पति सूंघ के आ जाना चाहिए। महीने में दो चार दिन कहीं निकलिए, गहरे में उतरिए, अपने अंदर झांकी, अपने को क्यों भूल रहे हैं? घर को संभालने के, पैसों के संभालने के चक्कर में अपना बलिदान क्यों दे रहे हैं? आते हैं, चले जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? चिंताएं, परेशानियां, और क्या लेकर जाते हैं? तरह तरह की इच्छाएं लेकर जाते हैं, अधूरी इच्छाएं लेकर जाते हैं, और क्या लेकर जाते हैं? डेविड फाली ने एक पुस्तक लिखी है, राइज अर्जुन, भारतीयों को संबोधित करते हैं कि अर्जुन जागो। भारतीय का जागना जरूरी है, क्योंकि भारत का भारतीय, उसके खून में ऋषियों का खून बह रहा है। वो अध्यात्म को जैसे समझ सकता है पृथ्वी में और कोई नहीं समझ सकता। वो कहते हैं कि भारत का जागना केवल भारत के लिए जरूरी नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। नहीं, दुनिया के दूसरे धर्म और दूसरी संस्कृतियां क्या देंगी कि नॉन बिलीवर्स के खून से सने हुए हाथ वो हमें क्या सिखाएंगे, हमारे लिए क्या करेंगे? सबको प्रेम एकता सिखाने वाला तो भारत ही है। भारत का जागना, भारत का सुरक्षित रहना जरूरी है। हर भारतीय का, हर हम का, हमारे व्यक्तित्व का, हम लोगों का कर्तव्य है कि जागें, अपने अंदर उतरें, उपनिषदों को, ऋषियों को, हमारी परंपराओं को जानें, उन्हें पढ़ें। वो सारी पृथ्वी की जरूरत है, नहीं तो इस पृथ्वी में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो शुभ हो। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कैसा समाज, कैसी पृथ्वी हम देखना चाहते हैं? सबसे एक दूसरे से नफरत कर रही हो, लड़ रही हो, आस्थाओं के नाम पर लड़ रही हो, धर्म के नाम, संप्रदायों के नाम में लड़ रही हो, या एक ऐसी संस्कृति की कल्पना करते हैं जो परस्पर सबको प्रेम सबका रही हो? रुचि नाम वैचित्रात रिजगुटुल नाना पतजुषाम नृणाम एको गम्यस तमसि पयसा मरण वही। ऐसी संस्कृति की कल्पना करते हैं कि सबको जो नफरत सिखा रही हो। आज के इस प्रसंग में मैं परमपिता परमात्मा को, गुरुजनों को, सबको प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर का वैज्ञानिक जागे और उस वैज्ञानिक का विषय हो अध्यात्म विज्ञान, और उसके इर्द गिर्द विज्ञान डेवलप हो, भौतिकी विकास डेवलप हो, वो विकास हेल्प करने वाला होगा। हमारा विज्ञान प्रकृति विरोधी नहीं था, हमने प्रकृति की पूजा की है, उसको माँ माना है। आज का विज्ञान प्रकृति को शोषण कर रहा है, उस पर अधिकार करने जा रहा है। फिर से प्रकृति पूजकों की जागने की जरूरत है। ओम तत्सत। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि आइए समझिए।